नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान। घटना में 4 लोगों की मौत और कई लापता। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लिया। भारत और फिलीपींस ने उन्नत रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग को दिशा देने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना को स्वीकृति दी। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन और 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी। और रूस ने तेल आयात पर भारत का समर्थन करते हुए कहा, संप्रभु राष्ट्रों को स्वतंत्र रूप से व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हर्षिल क्षेत्र के धराली गांव में आज दोपहर बादल फटने से खीर गंगा नदी में अचानक आई बाढ़ से व्यापक तबाही हुई है। जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार धराली बाजार क्षेत्र में भारी मलबा आने से इमारतों, होटलों और दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य संबंधित टीम राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से लगी हैं। जिला मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य ने बताया कि प्रारंभिक सूचना के आधार पर 4 लोगों के मारे जाने की सूचना है।
क्लाउड बस्ट होने से काफी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस है और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी है, उसी के मद्देनजर हमने अपना आर्मी का टीम हर्षिल की है, उनको रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और स्थिति की लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और प्रभावित नागरिकों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।
बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए।
उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी को बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है।
कई मकान और होटल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, कई को बहुत गंभीर क्षति पहुंची है, कुछ लोगों के मृत्यु की भी सूचना है। केंद्र सरकार से हम लोगों ने एयर रेस्क्यू के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर मांगा है, उनकी तैयारी है। मौसम खराब होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम लोगों ने ये कहा है कि जहां तक संभव हो वहां भेज दें, वो भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस घटना में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राहत और बचाव कार्यों की सफलता की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर स्थिति का जायजा लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार की निगरानी में बचाव दल हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस घटना में प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की और उनकी कुशलता की कामना की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अचानक आई बाढ़ की घटना के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर जानकारी प्राप्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 3 और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 4 टीमों को घटनास्थल पर भेज दिया गया है। IBEX ब्रिगेड के ब्रिगेडियर मनदीप ढिल्लो ने कहा कि खोज और बचाव अभियान जारी है और फंसे हुए लोगों का पता लगाने और उनकी सहायता के लिए सभी उपलब्ध संसाधन तैनात किए गए हैं।
Today at about 13:45 hours, a mudslide and an avalanche struck village Dharali, around 4 kilometers north of Hasil, along the Gangotri axis. Indian Army column being the closest in Hasil camp was the first to respond and reach the location within 10 minutes of the incident. Rescue operations are underway. Until now, around 20 people have been rescued, of which those who are injured are receiving treatment in the battalion MID. Unfortunately, sometime after that, the mudslide and cloudburst also struck the Indian Army camp and portion of our rescue columns.
और अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन, भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। प्राथमिकता के आधार पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून से धराली में आई आपदा के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। वहीं पीड़ितों की मदद के लिए अब वायुसेना से भी संपर्क किया जा रहा है। निकटवर्ती राजकीय चिकित्सालयों और एम्स ऋषिकेश में भी बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस को क्रियाशील किया गया है। खतरे को देखते हुए स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
धराली में आई आपदा को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र हरिद्वार के नंबर है 01374222722, 731091312, 7500737269, टोल फ्री नंबर है 1077। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र देहरादून के नंबर हैं 01352710334, 27103355। भारतीय सेना ने कहा है कि उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद फंसे हुए लोगों का पता लगाने और उनकी सहायता के लिए अभियान जारी है। सेना ने बताया कि 20 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घायलों को हर्षिल में सेना के चिकित्सा केंद्र में चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। सेना के 150 कर्मी 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए और तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और फिलीपींस ने उन्नत रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग को दिशा देने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना को स्वीकृति दी है। ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअल्देज मार्कोस जूनियर की उपस्थिति में लिया। मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और फिलीपींस अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ऐसे में फिलीपींस के राष्ट्रपति की यात्रा विशेष महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्राचीन काल से ही संबंध रहे हैं।
हमारा बायलेटरल ट्रेड निरंतर बढ़ रहा है और $3 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसे और मजबूत करने के लिए इंडिया आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिव्यू को जल्द से जल्द पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। साथ ही हमने द्विपक्षीय प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में काम करने का फैसला भी किया है।
श्री मोदी ने कहा कि भारत फिलीपींस अपने संबंधों को महत्वपूर्ण साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के संबंधों को महत्वपूर्ण बताया और उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की।
As emissaries of our people, I bring with me the enduring friendship of the Filipino nation. I carry the message of our solidarity with India, both over the tragic attack in Pahalgam earlier this year and in the broader fight against terrorism. Despite these challenges, I also bear felicitations on India's remarkable transformation and inexorable march to become Viksit Bharat by 2047 under Prime Minister Modi's guiding hand.
नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव पेरिया सामी कुमारन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमुअल्देज मार्कोस ने द्विपक्षीय वार्ता में उन्नत रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत सहयोग के लिए वर्ष 2025 से 2029 तक कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 14 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
During this visit, both Prime Minister Modi and President Marcos have agreed to elevate the India-Philippines bilateral cooperation to the level of strategic partnership, aimed at furthering our engagements across a vast number of sectors, including political cooperation, defense, security and maritime cooperation, trade and investment cooperation, healthcare and pharma, cooperation in science and technology, space, connectivity, digital economy, fintech, consular matters, culture, tourism, people-to-people exchanges, and closer cooperation on regional, multilateral, and international issues of mutual interest.
फिलीपींस के राष्ट्रपति कल नई दिल्ली पहुंचे थे। वे 8 अगस्त तक भारत में रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी दल बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। इससे पहले संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा ने आज इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। लोकसभा पिछले सप्ताह ही इसे मंजूरी दे चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने आज 67,000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बीएमपी के लिए थर्मल इमेजर आधारित ड्राइवर नाइट साइट की खरीद को स्वीकृति दी गई। नौसेना के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर तथा बाराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अपग्रेड की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। वहीं वायुसेना के लिए माउंटेन रडार की खरीद और सक्षम तथा स्पाइडर हथियार प्रणाली के उन्नयन को स्वीकृति दी गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज दोपहर नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्वाचक पंजीयन अधिकारी और सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के रूप में कार्यरत 4 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। इन पर चुनाव संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने और जानबूझकर अनधिकृत व्यक्तियों को जानकारी देने का आरोप है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। रूस ने तेल आयात पर भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि संप्रभु राष्ट्रों को स्वतंत्र रूप से व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आज मॉस्को में भारत पर दबाव डालने के लिए अमेरिका की आलोचना की और ऐसी कार्रवाइयों को नाजायज बताया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश को राष्ट्रीय हितों के आधार पर व्यापारिक संबंध बनाने का अधिकार है। ये टिप्पणी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल की खरीद और पुनर्विक्रय के लिए भारत पर शुल्क बढ़ाने की चेतावनी के बाद आई है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है और कई हिस्सों में तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। एक रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। मंडी जिला में कोल डैम का जलस्तर बढ़ गया है और प्रबंधन ने अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की चेतावनी जारी की है। वहीं ब्यास नदी का भी जलस्तर बढ़ने के कारण पंडोह डैम से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। उधर किन्नौर जिला में भी सतलुज नदी उफान पर है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के समीप न जाने की सख्त चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के सभी 12 जिलों में अगले 12 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही और प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 308 अंक घटकर 80,710 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 73 अंक कम होकर 24,649 दर्ज हुआ।
और अब खेल खबरें। थाईलैंड के बैंकॉक में भारतीय मुक्केबाजों ने अंडर 19 और अंडर 22 एशियाई चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। अंडर 19 में आज 7 महिला मुक्केबाजों ने अपने पदक पक्के कर लिए। वहीं अंडर 22 में कल भारतीय मुक्केबाजी दल ने 6 और पदक पक्के किए थे। अंडर 22 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। 134वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय सेना FT ने त्रिभुवन सेना फुटबॉल क्लब को 1-0 से पराजित कर दिया है। नेपाल की त्रिभुवन सेना के 3 मैचों में 1 ही अंक रहा, जबकि भारतीय सेना के 2 मैचों में 3 अंक हो गए हैं। इस हार के साथ त्रिभुवन सेना की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई और भारतीय सेना की टीम के लिए नॉकआउट की उम्मीदें बढ़ गई हैं। डूरंड कप में कल 2 मुकाबले खेले गए। ग्रुप बी के मुकाबले में लिस्टन कोलासो के 2 गोल की मदद से मोहन बागान सुपर जायंट ने BSF की टीम को 4-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। कोलासो के अलावा सहल अब्दुल समद और मनवीर सिंह ने भी मोहन बागान के लिए गोल दागे। वहीं ग्रुप एफ के मैच में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने तरु फुटबॉल क्लब को 2-1 से पराजित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान। घटना में 4 लोगों की मौत और कई लापता। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति का जायजा लिया। भारत और फिलीपींस ने उन्नत रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय सहयोग को दिशा देने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना को स्वीकृति दी। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन और 6 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी और रूस ने तेल आयात पर भारत का समर्थन करते हुए कहा, संप्रभु राष्ट्रों को स्वतंत्र रूप से व्यापारिक साझेदार चुनने का अधिकार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।